మాధవ కుంజ విహారి రాధా మాధవ కుంజ విహారి జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధారి నందన వ్రజ జన్నారంజన యశోదనందన వ్రజ జన్నారంజన తీరా వనచారి తీరా వనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారి జయ జయ రాధా కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే बलदेवा जय सुभद्रा। गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नश्च प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 16 श्लोक संख्या 35। ज्येष्ठं मंत्रदृशं चक्रुः त्वाम् अन्वञ्च वयं स्मा हि विश्वामितः सुतान् आहा वीरवंत। भविष्यत ये मानम मे अनुग्रहन्तः वीरवतं वीरवंतं अकर्त माम। ज्येष्ठं मंत्रदृशं चक्रु ज्येष्ठं च मंत्रदृशं चक्रु त्वामन्वञ्जो वयं स्महि त्वामन्वञ्जो वयं स्महि। विश्वामित्रसुतामाः विश्वामित्रसुतामाः वीरवन्तो भविष्यत वीरवन्तो भविष्यत। ये मानं मेऽनुग्रहन्तो येमानं मेऽनुगृहन्तो वीरवन्तमकर्तमाम् वीरवंतमकर्तमाम्। एषं मंत्रदेशां चक्षो महामंत्रो वयं स्मै विश्वामित्रसुदामाहा भविष्यत हेमामग्रहेमन्तो वीरवन्तमकर्तमाम्। एषं चन्द्रतान्त्रिक्षो वयं स्मै विश्वामित्रसुतामाहा भविष्यत हेमारम्येऽनुमन्तो एदं मन्त्रेशं चक्षुर् मन्त्रदशं चक्षु वामन्मञ्चो वयं स्महि विश्वामित्रसुतानाः नीरवन्तो भविष्यत हेमानं मेनु ग्रहन्तो ज्येष्ठं मन्त्रदशं चक्षुः वामन्मञ्चो वयं स्महि विश्वामित्रसुतामाः नीरवन्तो भविष्यत हे मामन्तो नीरवन्तमकर्तमाम्। येषं मन्त्रदशं चक्षो मामन्तो वयं स्महि विश्वामित्रसुतामाः नीरन्तो भविष्यत हेमान्मेन्तो नीरवन्तमकर्तमाम्। शब्दार्थ इस प्रकार है, ज्येष्ठम बड़ा, ज्येष्ठ मंत्रदृशम मंत्रदृष्टा, चक्रुः स्वीकार कर लिया, त्वाम तुमको, अन्वंच पालन करने के लिए राजी हो गए, वयम हम स्मा निस्संदेह ही निश्चय ही विश्वामित्र विश्वामित्र मुनि ने सुतान आज्ञाकारी पुत्रों से आहा कहा वीरवंतः पुत्रों के पिता भविष्यतः भविष्यतः भविष्य में बनो ये जो मानम माम समस्त सम्मान में मेरा अनुग्रहंतः स्वीकार किया वीरवंतम अच्छे पुत्रों के पिता अकर्ता तुमने बनाया है माम मुझको। अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपादपादी के द्वारा श्रीपादपादी की चाहे अनुवाद। इस तरह छोटे मधुचंदों ने शूनकशेप को अपना बड़ा भाई मान लिया और उसने कहा हम अपने आपके आदेशों का पालन करेंगे। तब विश्वामित्र ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा चूंकि तुम लोगों ने शूनकशेप को अपना बड़ा भाई मान लिया है अतएव मैं संतुष्ट हूँ। तुम लोगों ने मेरे आदेश को स्वीकार करके मुझे योग्य पुत्रों का पिता बना दिया है अतएव मैं तुम सबों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी पुत्रों के पिता बनो। तात्पर्य विश्वामित्र के 101 पुत्रों में आधे ने शूनकशेप को बड़ा भाई नहीं माना किंतु आधों ने उनके आदेश को मान लिया अतएव पिता के आज्ञाकारी पुत्रों को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया अन्यथा उन्हें भी पुत्रविहीन मलेच्छ बनने का शाप दे दिया होता। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। रक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानोस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। विश्वामित्र के चरित्र का वर्णन हो रहा है। विश्वामित्र के पुत्रों का विषय में चर्चा हो रहा है। किस प्रकार विश्वामित्र और उनके पुत्र के बीच में संवाद हुआ, किस प्रकार विश्वामित्र ने अपने पुत्रों के साथ व्यवहार किया और विश्वामित्र के पुत्र ने उनके पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, वर्णन हुआ है। शास्त्रों में गुरु का जो स्थान है वो महान माना गया है और खास करके एक पुत्र के लिए अपना पिता गुरु होता है और गुरु जो है वो पिता के समान होते हैं। एक योग्य पुत्र के लिए पिता गुरु है और एक शिष्य के लिए उनके गुरु पिता है। अगर गुरु को पिता कहा जाए और पिता को गुरु कहा जाए दोनों में कोई दोष नहीं है। ऐसी इस प्रकार मान के चलना चाहिए। वही भागवत में कहा गया है, अगर कोई अपने पर निर्भर करते हैं, उनको अगर मृत्यु से तार नहीं किया जा सकता है या कर सकते हैं, तो माता न सस्यात या जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, गुरु मत बनो, माता मत बनो, पिता मत बनो, कुछ भी मत बनो, यानी कोई पदवी को स्वीकार मत करो, कोई पोस्ट को स्वीकार ही मत करो। अगर आप अपने ऊपर जो निर्भर करते हैं उन लोगों को आप मृत्यु से तार नहीं सकते हैं, तो अगर आप मृत्यु से उनको त्यार सकते हो यानी कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते हो, तभी आप एक जिम्मेदारी का पदवी को स्वीकार करो। तो इधर विश्वामित्र के पुत्र, विश्वामित्र साधारण व्यक्ति नहीं, महान ऋषि है। तो महान ऋषि होने के नाते वो जान सकते हैं कि उनके पुत्रों में श्रेष्ठ कौन है, वो जान सकते हैं कि अन्य लोग जो है उनमें से श्रेष्ठ कौन है। अभी तक हम सुनक्षेप के बारे में सुन रहे थे, विश्वामित्र ने कहा कि आप सुनक्षेप को ज्येष्ठ दाता के रूप में स्वीकार करो, और 50 पुत्रों को समझ में नहीं आया, और बाकी अन्य पुत्रों को भी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि मेरे पिता जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, जो भी मेरे पिता कहेंगे उनका आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए। मधुचंद जो इन सारे पुत्रों के लीडर के रूप में माने जाते हैं, इतना हद तक कि सारे पुत्रों का नाम उनके नाम की वजह से पड़ा मधुचंदा, वो भी समझ गए। क्या समझे? सुनक्षेप के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरे पिता जो है वो महान है वो जानते हैं। वो महान होने के नाते उनकी नजर में अगर कोई व्यक्ति को महान रूप में घोषणा करते वो निश्चित रूप में महान होंगे। अभी तक ये 100 के 100 पुत्र या 100 मधुचंद के साथ 100 पुत्रों के साथ में सुनक्षेप का महत्व किसी को नहीं मालूम था, केवल विश्वामित्र पहचान पाए। इसलिए विश्वामित्र ने उनको गोद लिया, नहीं ये मुझे चाहिए, मैं उनको गोद लेता हूं, और उनको बलि चढ़ाने वाले थे उनसे गोद लिया, क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं सुनक्षेप साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये सुनक्षेप का जो महत्ता है इस श्लोक में वर्णन किया गया है। ऐसा क्यों विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को क्यों कहा कि आप सुनक्षेप को स्वीकार करो? बड़ा भ्राता मतलब पिता के समान, पिता मतलब गुरु, यानी आप सुनक्षेप को गुरु के रूप में स्वीकार करो। ऐसा क्यों कहा? इस बात का प्राकट्य इस श्लोक में हुआ है। क्या कहा गया है? ज्येष्ठम मंत्र दृशाम चक्रु, मंत्र दृशाम, ये अति महत्वपूर्ण शब्द है। अभी तक जो श्लोक चल रहा है उस श्लोकों का आधार ये शब्द है। ऐसा कहा गया है शास्त्र में, ऋषयः मंत्र दृष्टारः, जो वैदिक मंत्र होते हैं वो सारे वैदिक मंत्र ऋषियों के द्वारा प्रकट होता है। वैसे वैदिक मंत्र सब शाश्वत है, सनातन है, लेकिन सनातन होने पर भी कभी व्यक्त होता है कभी अव्यक्त होता है। लेकिन ये वैदिक मंत्रों का जो व्यक्त प्राकट्य होता है या प्राकट मतलब व्यक्तिकरण होता है वो ऋषियों के द्वारा होता है। इसलिए इधर ये जो सुनक्षेप है वो एक ऋषि है। ऐसा कहा गया है कि श्रुति मंत्रों में कुछ मंत्र है, कुछ मंत्र वर्ग है जिसको कहा गया है कस्य नूनम कतस्या मृतानाम, ऐसे जो मंत्र है ये मंत्र का प्राकट्य सुनक्षेप के द्वारा हुआ है। यानी ये समझिए कि जैसे अगस्त्य ऋषि ने गायत्री मंत्र को प्रकट किया, ऐत्रेय ऋषि ने ऐत्रेय उपनिषद को प्रकट किया, तैत्रेय ऋषि ने अनेकों उपनिषद के मंत्रों को प्राकट्य किया, कभी ऐसा वर्णन किया गया है शास्त्र में। जब ऋषिगण जंगलों में जाके जब ध्यान लगाते थे तब जो मंत्र आकाश में है उन मंत्रों को अपनी चेतना में प्रकट करा के वो ऋषियों को उपदेश देते थे। जैसे कि एक रेडियो समझ लीजिएगा, वो हवा में आकाश में जो कुछ शब्द है वो शब्द को वो रिसीव करता है, वो एक यंत्रण के द्वारा वो प्राप्त करके हमको सुनाता है। तो वैसे ही जो ऋषिगण होते हैं, जो पहले वैदिक मंत्र तो कोई लिपिबद्ध था नहीं, अव्यक्त रूप में था, वो वैदिक मंत्र कहाँ है? आकाश में है। तो ये ऋषिगण थे, दे आर द रिसीवर। इससे कहा गया है ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ये मंत्रों को देख सकते हैं, वो देख के शिष्यों को उपदेश देते हैं। अभी जो हमारे सामने वेद प्रकट है वो भगवान वेदव्यास के द्वारा उनकी कृपा से लिपिबद्ध हुआ है। पहले जमाने में या कलयुग के पहले बात से सत्य त्रेत द्वापर में कोई भी वैदिक मंत्र जो है वो लिपिबद्ध नहीं था। एक शिष्य गुरु के पास जाता है और गुरु अपने जो हृदय में प्रकट हुआ जो वैदिक मंत्र है उनको शिष्य को सुनाते हैं। जैसे वो सुनाएंगे वो शिष्य उसको सीखता है। इसलिए ऋषयः मंत्र दृष्टारः, जब भी कोई मंत्रों को उच्चारण किया जाता है कुछ चीजों को उच्चारण करना जरूरत होता है। मंत्र उच्चारण करने से पहले सबसे पहला कौन सा छंद में आप उच्चारण कर रहे हो, उस मंत्र का देवता कौन है, उस मंत्र का ऋषि कौन है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे भगवद्गीता को उच्चारण करोगे उसका ऋषि कौन है, वेद व्यास ऋषि है, उन्होंने प्रकाशित किया। तो वैसे गायत्री मंत्र उच्चारण करोगे तो अगस्त ऋषि का नाम लेना पड़ता है। अगर कोई अन्य मंत्र है कश्यप ऋषि का नाम लेना पड़ता है। कोई अन्य मंत्र गायत्री मंत्र है कश्यप ऋषि ने प्रकाशित किया था। इसलिए अरिष्टुप छंद देवता कौन है, इस मंत्र का देवता कौन है उसका भी वर्णन करना पड़ता है। और अनेकों अनेकों चीजें हैं, न्यास क्रिया करना पड़ता है। ये सब वैदिक पद्धति है, अभी तो प्राय लुप्त हो गया है और जानते भी नहीं है। और इससे चैतन्य महाप्रभु ने हमको सरल विधि दिया जैसे हरे कृष्ण जप करो, लेकिन उसमें भी हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण जप करने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, ये क्यों जप करते हम? क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र को प्रकाशित करने वाले देने वाले कौन है, ये पंच तत्व है, चैतन्य महाप्रभु है। तो इसलिए ऋषयः मंत्र दृष्टारः, वैसे ही ये पूरा जो वैदिक विधि है, भले ही हम इतना हद तक पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी थोड़ा सा भागवत विधि है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, पंचरात्र विधि के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो वैदिक टेक्नोलॉजी है या जिस तरीके से वेदों को प्रकाशित किया गया, प्रस्तुत किया गया, उच्चारण करने की विधि बताया गया है, उसको थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। वो जानने से पता लगता है कि कितना गहरा है हमारी संस्कृति, कितना महान है। इसलिए ऋषयः मंत्र दृष्टारः, विश्वामित्र जान सकते या जानते थे, ये सुनक्षेप साधारण व्यक्ति नहीं है। जो साधारण मेरे पुत्रों को जो दिखता नहीं है वो देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? मंत्रों को देख सकते हैं, वैदिक मंत्रों को देख के वो प्रकाशित कर सकते हैं। इससे कहा गया मंत्र दृशाम ज्येष्ठम मंत्र दृशाम चक्रु, चक्रु मतलब स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? वो इससे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो जानते थे ये मंत्र दृशाम है, ये बड़ा महान ऋषि है। इससे स्वीकार किया क्योंकि मेरे गुरु यानी मेरे पिताजी ने कहा, इससे मैं स्वीकार करता हूं। तो इसलिए अभी एक बार मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें श्री प्रभुपाद के शिष्य जब शुरुआत में उनके ज्वाइन किए थे तो श्री तमाल कृष्ण महाराज, तो उन्होंने कहा हम कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार इसलिए नहीं किए क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है। कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार इसलिए नहीं किए क्योंकि शास्त्र में उनको भगवान के रूप में घोषणा किया गया है। हमने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा। अगर प्रभुपाद जी अगर कोई और को भगवान के रूप में कहते तो हम उनको स्वीकार कर लेते। हम ये ज्यादा विचार नहीं किया क्या सही है क्या गलत है, हमने केवल गुरु का आज्ञा को स्वीकार किया। उन्होंने बोला ये करो, हमने करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला ये करो, हमने करना शुरू किया। हम जरा सा विचार करने भी नहीं कि क्यों कह रहे, ऐसे कह रहे, क्या बात है, क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर जरा भी विचार ही नहीं किया हमने। क्योंकि हमारे बुद्धि में गुरु को, उनकी वाणी को, उनकी आज्ञा को समझने की उतने क्षमता नहीं है। इससे कहा गया वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझे। बड़े विद्वान व्यक्ति भी ये नहीं जान सकते कि वैष्णव क्या बोल रहे हैं या क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को समझना बहुत मुश्किल है। इससे शास्त्र में कहा गया है यथा रूप में जैसे आपने आपकी गुरु ने कहा वैसा करो। अगर कुछ संशय है गुरु की आज्ञा में तो वो संशय को दूर करने का तरीका क्या है, उसको भी समय कहा आ गया, क्योंकि संशय जो है वो आता है। अगर वो संशय को मन में ही रखेंगे, संशय आत्मा विनश्यति, भगवीता में भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय है वो नाश हो जाता है। अगर संशय आया तो क्या करेंगे, तो संशय को दूर करने का तरीका है। भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चौथे अध्याय में जब हुआ, चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कृष्ण को, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मृदुच्छ्वाक वे भवित एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षो विदु सकार महता योग निष्ठ परांत। तो जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ये बात कहा कि मैं अनेकों साल पहले ये ज्ञान को विस्वान को दिया, विस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, वैसे धीरे धीरे से सकार ने महता योग नष्ट परांत पाई, ये महान योग जो है नष्ट हो गया। सही वाय मया ती डे प्रत पुरातन भक्तोश सकार की तिरहस्यम हितम, मैं तुमको अर्जुन इसलिए दे रहा हूँ कि ज्ञान तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो। जैसे भगवान ने अर्जुन को ये बात कहा तो अर्जुन के मन में क्या आया, संशय आया। तो संशय आया तो अर्जुन ने क्या किया, क्या मन ही मन में ही नहीं सोचा कि क्या क्या बोल रहे, पता नहीं ये कैसे हो सकता है। तो संशय आया तो उन्होंने क्या किया अर्जुन ने, उन्होंने तो संशय को कैसे प्रकट किया, उन्होंने कहा हाँ परम भवतो जन्म परम जन्म विश्वतः कथम एतद् विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवान इति, ने कहा कि अपरम भवतो जन्म, आपका जो जन्म है अपरम, विवस्वान के बाद आपका जन्म हुआ, परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान का जन्म आपके पहले हुआ। अब देखिए एक बार बोलने से हो जाता है ना कि आपका जन्म जो है विवस्वान के बाद हुआ, लेकिन ये भी कहते अर्जुन विवस्वान का जन्म आपके पहले हुआ और आपका जन्म विवस्वान के बाद हुआ। तो कथम एतद् विजानीयाम, अर्जुन का प्रश्न देखिएगा क्या प्रश्न है, मैं इस बात को कैसे समझ सकता हूं। उनका प्रश्न ये नहीं था कि ये कैसे हो सकता है, उनका प्रश्न क्या था, कथम एतद् विजानीयाम, मैं इस बात को कैसे समझूं। तो इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। अगर अर्जुन इस प्रकार पूछते इस बात के कैसे हो सकता है, इसका अर्थ क्या है, आप जो बोल रहे हो गलत है, मेरा संशय जो है जो आप बोल रहे हैं उसके ऊपर और आपके ऊपर है, मेरा संशय आपके ऊपर है, मेरे अधिकार आपके अधिकार के ऊपर है, आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर है। लेकिन अर्जुन ने क्या पूछा, कम एतद् विजानीयाम, अर्जुन का कहने के भाव ये था, हे भगवान आप जो भी कह रहे हो वो सही कह रहे हो, आप जो भी कहेंगे वो सत्य है, वो परम सत्य है, लेकिन संशय जो है वो आपके ऊपर नहीं है, आपके शब्दों के ऊपर नहीं, संशय किसके ऊपर है, मेरी बुद्धि के ऊपर है। खत्म ये तद विजानिया, मैं इस बात को कैसे समझूं, मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं, इसलिए आप मुझे विस्तार से समझाइए। तो ये संशय करना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अधिकारी के ऊपर संशय करोगे, गुरु के ऊपर संशय करोगे, नाश होगा। लेकिन गुरु की वाणी को समझने में असमर्थता की वजह से आप संशय व्यक्त करोगे तो वो सही माना जाता है। जब इस प्रकार सारे संशय दूर हो जाता है तब भगवान का प्रकटी होता है। इससे भागवत में कहा गया है कि विद्यते हृदय ग्रंथे चिंतन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टिवात्मनीश्वरे। कृष्ण का दर्शन करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहला कि हृदय ग्रंथि तो ठीक है, साथ साथ में चिंतन्ते सर्वसंशयः, ये सारा संशय को दूर करना है। इसलिए गुरु के पास जाके उनका शरणागत होके हमारे मन में सारे संशय को दूर करना चाहिए। अभी ये जो 50 पुत्र थे जो विश्वामित्र की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, वो विश्वामित्र ने उनको शाप दिया, आप सब मलेच्छ बन जाओ। क्या विश्वामित्र जो है क्रोध के वश आके शाप दिया, नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो मेरे ऊपर संशय करना, पिता के ऊपर संशय करना या गुरु के ऊपर संशय करना और बिना कोई निराकरण कोई पूछे तिरस्कार कर देना, ये मलेच्छों का स्वभाव है। मलेच्छों का स्वभाव होने के नाते उन्होंने कहा, विश्वामित्र ने कहा कि आप मलेच्छ बन जाओ, यू बिकम मलेच्छ, जो वैदिक सभ्यता को पालन नहीं करता है आप ऐसे बन जाओ। तो ये वैदिक सभ्यता में मलय सभ्यता में अंतर यही है। अंतर यही है कि वैदिक सभ्यता में शरणागत होना, आज्ञाकारी पुत्र होना या आज्ञाकारी शिष्य होना, ये वैदिक सभ्यता का मूल है। जब तक हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तब तक आध्यात्मिक प्रगति क्या भौतिक प्रगति भी नहीं कर सकते। कोई भी कार्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। वैसे आज्ञाकारी शिष्यों को, आज्ञाकारी पुत्र अगर नहीं होते, इससे अच्छा है कि पुत्र नहीं होना अच्छा है। पुत्र इस प्रकार के जो आज्ञा को पालन नहीं करते, वैसे पुत्र होने से, वैसे शिष्य होने से अच्छा है कि कोई शिष्य ना हो, कोई पुत्र ही ना हो, क्योंकि वो उस पुत्र का भी दुर्गति का कारण बनता है, उस गुरु का भी दुर्गति का कारण बनता है। इसलिए ये वैदिक सभ्यता में मलय सभ्यता में अंतर है। आप हमने ये देखा है कि जो मलय सभ्यता में पाश्चात्य देश में जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, इवन बचपन से ही वो माता पिता का बात नहीं मानता है, वो कुछ भी बोलेंगे उल्टा सीधा बोलता है, और जैसे 12 13 साल 14 साल हो जाता है घर छोड़ के चले जाता है, तो आज्ञा को स्वीकार करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक तरीके से मलय संस्कृति में नहीं है। मैं क्यों करूं, तुम्हारी बात क्यों स्वीकार करूं, वो बात रहता है। लेकिन हमारी वैदिक सभ्यता में क्या है, आगे पूछते हैं क्या आज्ञा बताइए, आज्ञा बताइए। पुत्र जो है पिताजी का आज्ञा का इंतजार करता है, इतना हद तक कि पिताजी का क्या है, अगर बड़े भाई का भी वो आज्ञा को तिरस्कार नहीं कर सकता, ये वैदिक सभ्यता है। तो ये शरणागति, आज्ञाकारी होना, ये वैदिक सभ्यता है। अगर वो नहीं है, ये आदर देना, आज्ञाकारी पुत्र आज्ञाकारी शिष्य नहीं होना है, तो ये वैदिक सभ्यता नहीं माना जाता है, ये मलय सभ्यता माना जाता है। तभी देखिए इधर ज्येष्ठम मंत्र दिशाम चक्षुः त्वाम, उन्होंने कहा कि आपके जो आज्ञा है हम अनवंशः हम प्राप्त, हम उनको पालन करेंगे। ने कहा वयम स्मा ही विश्वामित्रः, तो विश्वामित्र ने क्या कहा, जो लोग, जो पुत्र उन्होंने इनकी आज्ञा को स्वीकार किए, उनको उन्होंने कहा आहा वीरवंत भविष्यंतः, ने कहा कि आप भविष्यंतः, आप भविष्य में वीरवंतः क्या बनोगे, आप वीरवंत बनोगे, यानी अनेकों अनेकों पुत्र आपको होगा, यानी आपको वैसे आज्ञाकारी पुत्र मिलेंगे। तो मैं आशीर्वाद देता हूं, आप उसका कोई चिंता मत कीजिए, मेरी आज्ञा को आपने पालन किया तो आपको भी वैसे ही पुत्र प्राप्त होंगे जो आज्ञाकारी होंगे भविष्यतः। ये मानम, तुमने कहा कि क्यों, क्यों मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे मान दिया। क्या मान दिया, अच्छे पुत्र होने का मान दिया, बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर बात है। तो मानम में अनुग्रहंतः, क्योंकि आपने मेरे आज्ञा को पालन किया, ये आज्ञा को पालन करने की वजह से मुझे ऐसा एक सम्मान दिया। क्या सम्मान दिया, अच्छे पुत्र प्राप्त करने का सम्मान दिया। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। जब हम गुरु की बात को स्वीकार करते हैं या उनकी आज्ञा को पालन करते हैं, उसमें क्या, किसका है, गुरु का सम्मान बढ़ता है। गुरु का ही सम्मान नहीं बढ़ता है, साथ साथ में हमारी जो भी सम्मान है वो भी बढ़ता है, शिष्य का भी सम्मान बढ़ता है। तो इसलिए वैदिक मंत्रों में कहा गया है सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ये कोई भी ये आध्यात्मिक कार्य करने से पहले ये मंत्र को उच्चारण किया जाता है, ये परंपरा है। तो भौतिक स्कूलों में ही गाया जाता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, वो भौतिक शिक्षा मिल रहा है उधर। तो इसकी इसका अर्थ क्या है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु, हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में खाएंगे, सहवीर्यम करवावहे, साथ साथ में हम यश को प्राप्त करेंगे, तेजस्विनावधीतमस्तु, साथ साथ में हम तेज को प्राप्त करेंगे, शक्ति को प्राप्त करेंगे। ये गुरु और शिष्य साथ में गाने वाला मंत्र है। इधर हम देखते हैं विश्वामित्र ने यही बात को कहा, क्योंकि आपने मेरी आज्ञा को स्वीकार किया, इसकी वजह से मेरा मान बढ़ा। क्यों मान बढ़ा, क्योंकि मुझे अच्छे पुत्र प्राप्त हुए। देखिए पुत्र की अच्छाई या शिष्य की अच्छाई किसमें है? गुरु या पिता की आज्ञा को स्वीकार करने में है। तो उस गुरु या पिता की आज्ञा को स्वीकार करने से गुरु का भी सम्मान है और शिष्य का भी सम्मान बढ़ता है। सहवीर्यम करवावहे, दोनों साथ में प्रगति कर सकते हैं। अगर गुरु का आज्ञा को तिरस्कार करते हैं तो उस गुरु का भी अपमान होता है और शिष्य का अपमान, दोनों को अपमान होता है, दोनों को कुछ लाभ नहीं है। तब वो शिष्य गुरु सोचते हैं ऐसे शिष्यों को प्राप्त करके क्या फायदा, उसको निकाल दो। जैसे जो विश्वामित्र जिस प्रकार उन्होंने इस कार्य किया, या वैसे शिष्य कुछ पुत्र थे उनकी आज्ञा को पालन नहीं किया। अब देखिए कि हमारे घरों में भी इधर आप सब अनुभव किए होंगे, जिसका जिनके पुत्र है वो बचपन से, कितने पुत्र है जो आप पिता का बात माने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता को बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है मैं बोलूं, क्योंकि बच्चों का भी आजकल ऐसा आदत हो गया है जो भी पिता बोलेंगे उसका ठीक उल्टा करेंगे। तो उसके पिता क्या बोलते हैं, वो चीज बोलते हैं जो उनको कहना नहीं था। मान लीजिए बच्चे को बोलेंगे उसको पढ़ने का है, बच्चे बोले पढ़ाई करो, पिता को बोलना पड़ता है बेटा जाके खेलो ना। तभी बोलते नहीं मैं पढ़ूंगा भी। तो ठीक उल्टा हो गया, क्यों? मलेज सभ्यता है, इट इज ए कल्चर ऑफ मलेचर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी का अर्थ क्या है? मैं अकेला हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी को निर्भर नहीं हूं। तो पिता भी, पिता के सामने वो बेटा सिगरेट पीता है, दारू पीता है, और पिता का कुछ बात है वो पुत्र नहीं मानता है, और पिता पूछते क्यों नहीं मान रहे हो, मतलब मैं, मेरा अपना विचार है, तुम एक व्यक्ति हो, तुम अलग हो, तुम्हारा विचार अलग, मेरा अलग विचार है। ये जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है उसकी वजह से बहुत सारे क्लेश आते हैं। कोई ना पिता खुश रहता है, ना पुत्र खुश रहता है, ना पति खुश रहता है, ना पत्नी खुश रहती है, पूरा समाज में केवल उत्पात ही उत्पात रहता है। तो इसलिए वैसे उत्पात मचाने के जो सभ्यता है उस सभ्यता को प्रोत्साहन नहीं करना है। इसलिए विश्वामित्र ने क्या कहा, वैसे शिष्यों को, वैसे पुत्रों को नहीं चाहिए। आज्ञाकारी पुत्र नहीं है तो इससे अच्छा कि पुत्र नहीं होना अच्छा है। इसलिए उन्होंने उन पुत्रों को शाप दे दिया, बोला कि आप चले जाओ। और इधर आखिरी लाइन में कहा विश्वामित्र अकर्तमाम, आपने मुझे बनाया, अकर्तमाम मुझे एक ऐसा सम्मान दिया ताकि सारे जगत याद रखेगा कि मुझे ऐसे पुत्र प्राप्त हुए कि मैंने और एक पुत्र को कहीं और से एक व्यक्ति को लाया और उन्हें कहा कि उनको आप लीडर के रूप में स्वीकार करो, तुरंत आपने मान लिया, उससे मैं बहुत धन्य हूँ। सिर्फ में एक पिता या गुरु भी शिष्यों की जो आज्ञाकारी गुण को देख के वो भी उनको धन्यवाद देते हैं। ये योग्य गुरु या योग्य पिता का लक्षण है, योग्य प्रचारक का ये लक्षण है कि अपने शिष्यों में अगर कोई अच्छा गुण दिखाई पड़ता है उस गुण को लेके उनका उनको आभार व्यक्त करना कि आपकी जो गुणवत्ता है वो क्या है, मेरी गुणवत्ता का आप प्रकाश कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमेशा हर पिता चाहता है कि उनका जो पुत्र है वो आगे बढ़े, वो अच्छा कार्य करे, वो एक अच्छा व्यक्ति बने। क्यों? क्योंकि अगर पुत्र अच्छा है तो उनको देख के सब लोग बोलेंगे पिता कितना अच्छा होगा, है कि नहीं, स्वाभाविक तरीके से। इसलिए हमको भी ये स्वीकार करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं तो उनके प्रतिनिधि हैं, तो हम उनकी आज्ञा को स्वीकार करने से क्या हो रहा है, हमारा यश भी बढ़ता है और श्री प्रभुपाद जी का यश भी बढ़ता है। अगर हम उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेगा, अरे कैसा शिष्य है, देखो वो साथ साथ में वो बोलेंगे पता नहीं कैसा गुरु है, कैसे शिष्यों को रखा है। तो ये कुछ शिक्षाएं हम इस प्रसंग से स्वीकार कर सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा गया कि जो पिता का गुरु का आज्ञा को स्वीकार नहीं करता, संशय करता है गुरु के ऊपर, वो कौन है, वो मलेच्छ है। इससे शास्त्र में कहा गया है गुरुषु नरमति तपाशंडी भवित ध्रुवम, भगवत में कहा गया गुरुषु नरमति, ये सोचना कि मेरे गुरु जो है वो साधारण व्यक्ति है, क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं है वो, जो भी बोलते हैं वो कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आए फिर भी करना चाहिए, अगर समझने का प्रयास करना है उनके पास जाके अच्छी तरह से प्रश्न पूछना चाहिए। किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए? प्रतिपक्ष जो प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, परपक्ष प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे अर्जुन ने पूछा, क्या प्रश्न था उनका? कथमेतद् विजानीहि, मैं उन बात को कैसे समझूं? तो संशय को दूर कर लेना चाहिए, ऐसे संशय करना ही नहीं चाहिए, गुरु ने जो कहा वो कर देना चाहिए। अगर संशय है तो कैसे दूर करना चाहिए? ये समझना चाहिए कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो मैं नहीं देख सकता हूं मेरे गुरु देख रहे हैं, तो इसलिए उनका आज्ञा को पालन करना उचित है। तो ये प्रसंग से हमको ये शिक्षा प्राप्त होता है, खास करके इस श्लोक में तो सुनक्षेप की जो महत्ता वो प्रकाशित किया गया है। भले ही उनको नहीं मालूम था 50 पुत्रों को या सुनक्षेप की महत्ता, तो मेरे गुरु ने कहा ना इसे मैं कर दूंगा, आई विल डू दैट। शास्त्रों में अनेक अनेक उदाहरण है गुरु भक्ति के विषय में, हमको उसको पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और गुरु की आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? हाँ तो इनका एक प्रश्न है कि गुरु अच्छा होगा तो मानेंगे या गुरु खराब है को कैसे पहचानेंगे? एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास, ने कहा प्रभुपाद जी गुरु का शरण लेना है, आजकल जो है योग्य गुरु नहीं मिलते। ये व्यक्ति आगे किसको कह रहा है? प्रभुपाद जी तुरंत खड़े हो गए, अपना धन्ना रख बोले कि योग्य शिष्य नहीं मिलते करके चले गए। अरे वो आके किसको कह रहा है? जैसे आप कोई मिठाई की दुकान में आके पूछो आजकल मिठाइयां नहीं मिलता है। तो क्या बोले? खरीदने वाले नहीं मिलते। तो प्रभुपाद जी गुरु है, पहले योग्य शिष्य बनाओ, योग्य शिष्य बनेंगे जगत त्रय गुरु सारे तीनों लोगों के गुरु कौन है? कृष्ण है, और कोई गुरु हमारे होते परमात्मा के रूप में है, वो हमको योग्य गुरु के पास लेके जाएंगे। ये था माम प्रबध्यंते तामस्तय भजाम, हम जिसको जिस प्रकार की इच्छा होता है उसके अनुसार उसको उस प्रकार गुरु मिलता है। अगर चोरी करने का इच्छा है कोई गुरु चोर के चोर गुरु मिलता है उसको, है कि नहीं? तो अगर कोई धोखेबाज है तो धोखेबाज गुरु मिलता है कि नहीं? जिस प्रकार की चेतना है उस प्रकार की चेतना के अनुसार हमको गुरु प्राप्त होते। तो मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी फ्रेंड की बात कहता हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, पहली बार जब इस्कॉन के प्रोग्राम में गया तो मायापुर में हमको लेके गए थे कॉलेज से, मेरे पास मेरे कॉलेज के साथ में और 5 और बच्चे थे मेरे मित्र थे। तो पहला हमारा प्रवचन था, डिस्कशन था एक तरीके से, वो मायापुर गुरुकुल में श्रील भक्ति विद्यापुर महाराज के साथ में था। तब बहुत चर्चा होने लगी वैदिक एजुकेशन, जो वैदिक विद्या और आधुनिक विद्या के बीच में जो चर्चा थी वो थी। करते करते तो मेरे एक मित्र ने कहा, नहीं अगर आए सब लोग ऐसा हो जाए कि प्रगति कैसे होगा? तो महाराज ने कहा कि आप सब लोग क्या कर रहे हो? तो हम लोग मरीन इंजीनियर है वो है ऐसा कहा प्रांकार के साथ। तब महाराज ने कहा कि आप अच्छे अच्छे भारतीय सभ्य परिवार में जन्म लिए हो, लेकिन आप एक कॉलेज ज्वाइन करके आप एक कुली बन गए हो, ये बिकम ए कुली। तो एकदम सब लोग क्या बोल, हमको कुली बोलते हो? हम तो इंजीनियर है। तब महाराज ने कहा, कूली क्या करता है? दूसरे व्यक्ति का सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। आप बड़े इंजीनियर बनके जहाज में क्या कर रहे हो? दूसरे व्यक्ति का सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह लाके जाते हैं, आप तो यही काम कर रहे हो ना। तो मेरे साथ में और चार लोग थे, उनको बहुत गुस्सा आया, बोले नहीं लेकिन उनको वैसे खराब लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा है, जीवन में पहली बार एक व्यक्ति से मिला जो सच्ची बोल रहा है। सब लोग वाह वाह करते थे, हाँ क्या कितना बड़ा इंजीनियर है, क्या है, बहुत अच्छा है, इसका अच्छा पगार मिलेगा वो। लेकिन मुझे ये सच नहीं लगता था। लेकिन जब ये महाराज ने भी इस बात को कहा ना कि ये सही बात बताया उन्होंने, जो सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य जिसके पास है वो शिष्य है। अगर गुरु आके बोलते, जैसे अर्जुन, सबसे पहला बात भगवान अर्जुन क्या कहा अर्जुन को, यू आर ए फूल, तो इसलिए अर्जुन उसको स्वीकार किए और उन्हें करिष्ये वचनं तवा, मैं आप जो कहेंगे मैं करने के लिए, आप जो कहे हैं उसको करने के लिए मैं तैयार हूं। सत्य को स्वीकार करना कि जो हिम्मत जिसके पास है वो शिष्य है। जैसे कोई आया, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, कोई शिष्य आया मुझे आशीर्वाद दीजिए, जब गुरु बोलते हैं इन सब से क्या फायदा, एक दिन तो मरने वाले हो, मरने के बाद सब लेके नहीं जाओगे, ये सुन के भी वो हंस के स्वीकार करता है, गुरु के रूप में स्वीकार करता है, एक कठोर पात है स्वीकार करते हैं, वो सही चीज। वैसे से कितने हैं मिलते नहीं। यस, महाभारत में 12 वर्णों का वर्णन है, चार पहला, वे चार के बाद जितने भी हैं वो सब वो अवैदिक है, वो जितने लास्ट में जाते हो। ये जो मलेच्छ जो है वो 11th में आते हैं ऐसे मैं सुना है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे प्रमाण कहीं मिला नहीं, देखना पड़ेगा। और लास्ट में यवन, मलेच्छ और यवन, मलेच्छ मतलब जो गंदे रहते हैं, और वैदिक नियमों को पालन नहीं करते। गंदे मतलब उनका चेतना गंदा, उनका व्यवहार गंदा, जो नहाते नहीं है और कोई भी पुरुष तीर्थ स्नान करेंगे ये सब बने। जो गाय का मांस खाते हैं वो लास्ट है, यवन लास्ट है, वो वर्ण है। ये 11वां और 12वां है, चंडाल है और बहुत सारे कुछ है, कुछ नाम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। चाहे शूद्र भी क्यों ना हो वो कम से कम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत है, क्योंकि परिचर्यात्मकम कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करता है, वो भी भगवद्धाम जा सकता है वैदिक सभ्यता को पालन करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सेवा करते हुए भगवान का नाम श्रवण करते हुए जा सकता है। जैसे कोई कोई IIT में है, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई फोर्थ ईयर में है, लेकिन दोनों IIT में है, लेकिन नहीं, तो इससे वो चार सेपरेट कैटेगरी है। उसके अलावा जितने भी है उसमें लास्ट मलेच्छ और यवन, मलेच्छ म्लेच्छ ये दक्षिण भारत की भाषा में उच्चारण करते हैं। अगर कोई सुबह उठ के तुरंत नहाता नहीं है तो हम बोलते क्या म्लेच्छ जैसा बात काल करें, यानी गंदा है। हाँ, नास्तिक, नास्तिक का आस्तिक तो वो तो कब का छूट गया उनका लेकिन अपने व्यवहार में जो गंदा रहता है वो नास्तिक, वो म्लेच्छ है, मानो नहाता नहीं है, वो बेसिकली वो है। आप विदेश में जाके देखो कोई नहाता नहीं 3-4 महीने तक, वो सेंट डाल के आते हैं, जो सेंट डालता है वो सब चीजें, वो मलेच्छों का कार्य है सब चीजें। हाँ, बराबर। प्रभुपाद जी की संस्था में उनका एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो म्लेच्छों के द्वारा जो शरणागति हम देख रहे हैं वो इधर वैदिक सभ्यता में जो पालन कर रहे हैं उनका जो शरणागति है उसमें हमको कमी दिखाई पड़ रहा है। इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार से जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी का शक्ति था, उनकी संगति से मेच्छों की जो शरणागति है वो शरणागति, गुरु की शरणागति की वजह से वो बहुत बहुत प्रगति कर लिए। वो उस समय भारतीय सभ्यता में जो जन्म लिए हैं, भले ही वो सभ्यता पूरा नहीं रहा लेकिन मरा हुआ हाथी भी हाथी जैसा ही समझ लीजिए, हाथी का ही मूल्य है। उनके ज्यादा शिष्य नहीं थे प्रभुपाद जी के, एक आध थे। प्रभुपाद जी जब तक इस पृथ्वी में प्रकट लीला रहते उस समय तक सब एकदम पूरा एयरप्लेन जैसा प्रगति कर लिए। लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा उनको, जब तक मैं हूं तब तक कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बाद आपकी ऐसी परीक्षा है। उसके बाद देखा गया है कि जो पहले के जो संस्कार है कुछ लोगों में, कुछ नहीं प्राय लोगों में, वो प्रकट हुआ। उसके वजह से वो सब प्रभुपाद जब थे अमेरिका में, समझ कितना था कनाडा में मॉन्ट्रियल मंदिर में, सूर्य मंगलारती में 500 लोग थे ब्रह्मचारी, 500 ब्रह्मचारी 500 मंगलारती में। अभी आप देखिए एक भी नहीं दिखता है, खाली पुजारी। वाई? क्योंकि गुरु की आज्ञा को पालन नहीं किया। वो प्रभुपाद जी का स्पेशल पावर था, वो जो 12 साल में प्रभुपाद जी ने जो किया है वो ना भूतो ना भविष्यति कार्य है। श्रीपाद रामानुजाचार्य को 70 साल लगा वेदांत सूत्र की ओर भाष्य लिखने के लिए, प्रभुपाद जी भागवत के ऊपर भाष्य उन्होंने धड़ाधड़ लिख दिया। दैट इज समथिंग स्पेशल। 1965 टू 1977 ब्रह्मा जी का पूरा दिन में ये जो स्पेशल साल है वो कुछ हो ही नहीं सकता। नो कंपैरिजन टू दैट जो हैपेंड, वेरी स्पेशल। लेकिन उसके बाद जो है प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है आप अपना जो कृष्ण के द्वारा विधि है उसको पालन करो। दैट वॉज वेरी स्पेशल केस। नहीं तो कैसे संभव है कि नहीं, कैसे संभव है? गाय का मांस खाना था, तुरंत छोड़ के आ गया, वो हरे कृष्ण जप कर रहा है, वो बोलता है एवरीबडी शुड चैंट हरे कृष्ण, सब लोग जप करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, क्यों अचानक को शक्ति कहां गया? प्रभुपाद जी का शक्ति उनके द्वारा चलायमान हो रहा। अभी जो है थोड़ा सा अलग सिनेरियो, जितना हम प्रभुपाद जी का शरण लेंगे, गुरु का शरण लेंगे, उतना हम वो फोर्स से कनेक्टेड है। और जैसे आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो अपना खुद खड़े रहेंगे तो हवा आएगा उड़ जाएगा। वेरी सिंपल। हाँ,
गुरु के प्रभाव के प्रति,
गुरु का प्रभाव
फर्स्ट क्या है? गुरु का प्रभाव शरणागति, शरणागति होगी तो गुरु का प्रभाव होगा।
गुरु का प्रभाव भी है और शरणागति भी है। जैसे प्रभुपाद जी के समय में एक शिष्य था, उनने लिखा एक लेटर, लिखा संन्यास डंडा सब माला भेज दिया, ने कहा कि मुझे कुछ ऊंचा ज्ञान मिला है कोई और गुरु से, मैं आपको वापस करता हूँ ये सब। तो इसका मतलब प्रभुपाद जी का प्रभाव नहीं था? तो दोनों हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जितना आचार्य की शक्ति होता है उस शक्ति के अनुसार संप्रदाय की जो ताकत हो बढ़ता है। लेकिन एकमात्र मापदंड नहीं है, शिष्य का शरणागति ही मापदंड है दोनों। तो कोई ये नहीं कह सकता शिष्य गुरु जी आप शक्तिशाली बनिए तब शरणागत होऊंगा। तो पहले आप शक्तिशाली बनो बाद में मैं शरणागत होऊंगा। या कोई और गुरु को नहीं कह सकते कि आप शक्तिशाली नहीं हो इसलिए कोई शरण नहीं ले रहा है। नहीं, यू कैन नॉट से दैट। ये दोनों हैं, दोनों अपने अपने स्तर में कार्य करता है। ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय है।